मेरा धे को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या की तीनों लोक के नाथ है सो तेरो आधी जय राधा माधव कुंज बिहारी।
सभी लोग प्रेम से गाइए।
जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन हाय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वन चारी यमुना तीर वन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन हाँ यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वन चारी यमुना तीर वन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गिरिधारी राधे
जयो,
जय जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जय गौर निताय जय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय जय 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 प्रभुपाद 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 प्रभुपाद
श्री राधा गिरधारी भगवान की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की श्री गौर निताय की श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंद
ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी
श्रीमद्भागवतम स्कंध एक अध्याय दो श्लोक क्रमांक 16 17 और 18
शुश्रूषोषदधानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान् महत् सेवया विप्रा पुण्यतीर्थ निषेवणात् शृण्वतां स्वकथां कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदन्तस्तो हि भद्राणि विधुनोति सुहत्सताम् नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी शुश्रूषोषदधानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान् महत् सेवया विप्रा पुण्यतीर्थ निषेवणात् शृण्वतां स्वकथां कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तन हृदिन्तस्तो हि भद्राणि विधुनोति सुहत्सताम्
नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातम् सह गण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सह गण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्रीगौरभक्तवृन्द। हरे वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबर दारुण बिंब फल धरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्व अहम् न जाने। नमः परस्मे पुरुषाय भूयसे सदूद्भवस्था न निरोधलीलया ग्रहीत शक्ति त्रितयाय देहिना अंतर्भवाया नुपलक्ष्मने किरात हूणा ध्रभुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवनाख सादय ये च पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्यन्ति तस्मे प्रभविष्णवे नमः। प्रचोदिता चे न पुरा सरस्वती
वितन्वताज ससतिम स्मृतिम हृदि स्वलक्षणा प्रा दुर्भूत्किलास्यत समे ऋषीणा ऋषभ प्रसीदता भूर्तेर्महतभी ययिमा पुरो विभू निर्मायशेते यदमोष पूरुष भुङ्क्तेर्गुणानशो षोडशात्मक सोलङ्क श्रेष्ठ भगवान् वचांसि मे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमो पङ्कजनाभाय नमो पङ्कजमालिने नमो पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजान्ध्रये आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे प्रियो जगत्करो करुणावतारो वन्देऽहम् अनन्त अद्भुतेश्वरम् श्रीचैतन्यमहाप्रभु नीचोऽयपि यत्प्रसादात् भक्तिशास्त्रप्रवर्तक
हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित प्रति बुधवार इस भागवत सत्र में हार्दिक स्वागत करते हैं। यहाँ पर नित्यम भागवत सेवया प्रति बुधवार को भगवान की विशुद्ध लीला रचित श्रीमद् व्यासदेव रचित ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की चर्चा हो रही है। दुनिया में जितने भी कार्य है सभी कार्यों में मंगल कार्य यदि कोई है तो है भागवत का श्रवण करना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जग मंगल गुण ग्राम राम के जग मंगल गुण ग्राम राम के दानी मुकुति धन धर्म धाम के। संसार में सबसे मंगल कार्य यदि कोई है तो वो है भागवत का श्रवण करना, क्योंकि मंगल कार्य उसे कहा जाता है जिस कार्य से सभी का कल्याण हो, सबका कल्याण हो। और भगवान की कथा सुनने से भगवान का नाम लेने से सबका कल्याण होता है, मंगल होता है। कुछ लोग कहते हैं कि पढ़ लिखकर डॉक्टर बनना ये सबसे मंगल कार्य है, सबसे शुभ कार्य है। परंतु देखा जाए तो इस संसार में सब लोग पढ़ लिखकर डॉक्टर बन गए तो इलाज किसका करेंगे? क्या मंगल हो जाएगा सबका? यदि कोई सोचे कि मैं एक ऐसी दवाई बनाऊंगा जिससे इस दुनिया में एक भी व्यक्ति बीमार नहीं होगा, तो कुछ लोग सोच सकते हैं कि ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, संसार में सब लोगों की बीमारी को हटा देना चाहते हैं। परंतु वह व्यक्ति संसार के सब लोगों की बीमारी को हटा देना चाहते हैं परंतु बुद्धि से विचार किया जाए तो वो मंगल कार्य नहीं है, क्योंकि यदि वे संसार में से बीमारी को दूर कर देंगे तो डॉक्टर भूखे मरेंगे। और मंगल कार्य उसे कहा जाता है जो सबके लिए शुभ हो, चाहे वह डॉक्टर हो, चाहे चोर हो, या कोई भी क्यों ना हो। तो मंगल कार्य भगवान का नाम, भगवान की कथा है। भगवान की कथा सुनने से, भगवान का नाम लेने से इस संसार में सभी जीवों का मंगल होता है। क्या कभी आपने सुना है भगवान का नाम लेने से किसी को नुकसान हो गया, लॉस हो गया? कहीं भी नहीं। यह सुनते हैं भजन नहीं करने से, भक्ति नहीं करने से दुख मिलता है, परंतु भजन करने से वास्तव में मंगल होता है। और इतना ही नहीं, दान मुकुति धन धर्म धान के। यदि कोई ये भागवत कथा सुने तो चार चीज प्राप्त होती है। भागवत कथा सुनने से धन प्राप्त होता है, जो आज सबके सबको बहुत सबसे बड़ा प्रश्न आज यह है कि धन कैसे कमाया जाए। बहुत बहुत प्रयास करते हैं धन कमाने के लिए, क्योंकि आज बहुत मंदी चल रही है, खाना उतना ही खा रहे हैं, दूध उतना ही, दूध का बिल वही आ रहा है, लाइट बिल भी वही आ रहा है, परंतु कमाई बहुत कम हो गई है। यदि धन भी चाहते हो तो भागवत कथा सुनो। भागवत सुनने से धन की प्राप्ति होती है। श्री मदातम, इस भागवत के दसम स्कंध में भगवान की सर्वश्रेष्ठ गोपियां कहती हैं कि भागवत श्रीमद भागवतम नाम ही है। ये भागवत का नाम श्रीमद भागवतम क्यों है? श्री का अर्थ होता है स्वाभाविक, श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी, और मद का अर्थ होता है युक्त। ये भागवत श्री से युक्त है, लक्ष्मी से युक्त है। यदि कोई यह भागवत का सहारा लेता है तो निश्चित रूप से धन मिलता है। कुछ लोग सब कुछ छोड़कर केवल भागवत का सहारा लेते हैं, उसे भी धन मिलता है। अब भागवत कथा कीजिए, हजारों रुपए लाखों रुपए आपको देंगे। आज तो कुछ ऐसे भागवत कहने वाले हैं जो कथा कहने से पहले ही फिक्स कर देते हैं कि भागवत कहने का हम 15 लाख रुपया लेंगे। मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं। प्रायः इस भारतवर्ष में भागवत कहने वाले ऐसे वक्ता हैं जो भागवत कहने से पहले धन की अपेक्षा रखते हैं, और उसे मिलता भी है। इतना धन लेंगे से धन प्राप्त होता है। ये बात अलग है, भागवत कहने के लिए धन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति भागवत कह रहा है तो वो जिस शक्ति से बोल रहा है, ये शरीर भी भगवान का दिया हुआ है, वो जो भागवत बोल रहा है उसमें भी भगवान की ही लीला है, और भागवत लिखने वाले भगवान व्यास देव उनका कुछ नहीं है, परंतु कुछ क्षण बोल देंगे तो लाखों रुपया ले लेते हैं। तो मैं ये नहीं करना चाहता हूं कि आप लोग भागवत कह के पैसा लीजिए या हम लेते हैं, नहीं। परंतु स्वाभाविक भागवत का सहारा कोई लेता है, भागवत सुनता है, तो उसे धन की प्राप्ति होती है, धर्म की प्राप्ति होती है। धर्म, क्योंकि भागवत सुनना ही एक धर्म है, और धाम की प्राप्ति होती है। धाम, भगवान का नित्य धाम प्राप्त होता है, और मुक्ति प्राप्त होती है। इस संसार में सब लोग दुखी हैं, भागवत सुनने से दुखों से मुक्ति मिलती है, सभी दुखों से मुक्त होकर व्यक्ति शांत बन जाता है, शांति अव्यर्थ कालत, और एक चैन की सांस लेता है। आप देखते हैं, आप अनुभव भी करते होंगे, संसार में दिन रात गधे की तरह मेहनत करके जब बुधवार को शाम को यहाँ पर बैठते हैं, कथा शुरू होती तो शांति मिलती है, नहीं मिलती है? और कभी कभी तो इतनी शांति मिलती है, इतनी शांति मिलती है कि नींद आ जाती है, प्राय हम देखते हैं। इस कलयुग में नींद लाने के लिए गोलियां लेनी पड़ती है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, परंतु मैं तो कहता हूं हमारे भागवत कथा में आ जाइए, चैन की नींद आ जाएगी, पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। खैर, सोने के लिए भागवत में नहीं आना चाहिए, परंतु ये एक फायदा है। तो सभी दुखों से निवृत्ति हो सकती है भागवत सुनने से। ये गोस्वामी जी तुलसीदास जी कहते हैं, और धाम प्राप्त होता है भगवान। ये मृत्यु के बाद ये सब मुक्ति, धन और धर्म इस जीवन में मिलता है, और मरने के बाद क्या मिलता है? मंगल कार्य उसे कहा जाता है जो कार्य करते वक्त भी आनंद मिले और कार्य करने के बाद भी आनंद मिले, उसे मंगल कहते हैं। कुछ लोग विवाह को मंगल कहते हैं। कहां गए हमारे लक्ष्मण प्रभु? मांगलिक प्रसंग आपने देखा होगा, जब वो कार्ड में लिखते हैं मांगलिक, मंगल प्रसंग, मंगल उत्सव। सच बताइए, विवाह करना मंगल उत्सव है? जिसका हो गया है वो बोल रमेश तो मुंडी हिला रहे हैं। मांगलिक प्रसंग, विवाह नहीं, विवाह में आनंद है। अरे जिस दिन विवाह होता है उस दिन तो दूल्हे राजा बन जाते हैं। जो लोग कभी चाय का भी नहीं पूछते हैं विवाह के दिन, तो भाई भाई मोजा पहनाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, परफ्यूम डालते हैं, और आजू बाजू में 10-15 लोग घूमते हैं। राजा, दूल्हे राजा माना जाता है। वास्तव में मंगलिक प्रसंग है, लेकिन वो मंगल केवल एक दिन के लिए रहता है। विवाह करने के लिए पहले तो बहुत कमाना पड़ता है, उसमें परिश्रम गधे की तरह, और बहुत बहुत कमा कर परिश्रम करके धन एकत्रित करके विवाह करते हैं, और उस विवाह के दिन में बहुत आनंद लूटते हैं एक दिन। परंतु विवाह के बाद तो क्या हालत होती है, ये तो जिसका हो गया है उसके मुंह से ही पता चल रहा है। बताइए कहां मांगलिक प्रसंग है इसमें? लेकिन फिर भी हम कहते हैं मंगल परिणय, मंगल प्रसंग। वास्तव में ये मंगल नहीं है। मंगल भवन य मंगल हारी द्रव दशरथ अजीर बिहार। राजा दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम और कृष्ण का नाम लेना, यही मंगल कार्य है। तो मंगल उसे कहते हैं जो इस जीवन में भी सुख मिले और बाद में मृत्यु के बाद भी सुख मिले। ये भागवत कथा ऐसी है जिसको सुनने से, सुनते वक्त भी आनंद मिलता है। विवाह करना है तो विवाह करने के लिए धन कमाने में आनंद नहीं है, बहुत मेहनत है, परंतु ये सुनने में भी आनंद है, और सुनने के बाद जब भगवान का धाम मिलता है वहां तो नित्य आनंद है, आनंद ही आनंद है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वे यही करेगा, और जो मूर्ख है वे भटकते रहेंगे। वास्तव में भागवत सुनना, भजन करना, ये बुद्धिमान व्यक्ति का काम है। मूर्ख लोग इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, मूर्ख लोग तो फंसे रहते हैं सब अलग अलग कार्य में। तो ये मृत्यु के बाद भागवत सुनने से धाम प्राप्त, भगवान का धाम मिलता है। और भगवान का धाम कैसा है? गीता में भगवान कहे हैं, मेरा धाम ऐसा है जिसमें नित्य सुख है, और एक बार कोई मेरे धाम में आ जाता है यत गत्वा न निवर्तन्ते। अर्जुन, एक बार कोई चला गया फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में इस दुखालय जगत में वापस नहीं आना पड़ता है। तो भगवान भागवत कथा सुनने से ये मुक्ति, धन, धर्म और धाम, ये चारों चीज प्राप्त होती है। तो ऐसी भक्ति विधान स्वामी श्री प्रभुपाद जी की कृपा से यह चारों चीज देने वाला, मुक्ति, धर्म, धन और धाम देने वाला भागवत, हम प्रति बुधवार को यहां पर श्रवण कर रहे हैं और श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय की कथा श्रवण करते आ रहे हैं। 88,000 ऋषि मुनि श्रोता है और सूत गोस्वामी वक्ता है, नैमिषारण्य में बैठे हैं। सूत गोस्वामी बहुत ही सुंदर पिछले के लास्ट प्रोग्राम में बताए, यद अनुध्यासिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम चिदंती को विदस्तस्य को न कुर्यात कथा रति। इस संसार में सभी व्यक्ति को अपने अपने कर्म के फल भोगतने पड़ते हैं, चाहे वह सुख हो या दुख हो। आपके कर्म में दुख लिखा है तो लाख प्रयास करने के बाद भी उस दुख को हटा नहीं सकते हो, और आपके जीवन में यदि सुख लिखा है तो यदि कोई व्यक्ति लाखों प्रयास करे इस व्यक्ति को दुखी करने का, परंतु सुख लिखा है तो सुख मिलकर ही रहेगा। कर्म का बंधन बहुत सूक्ष्म है और जो जो कर्म की लेखी होती है, जो लिखा होता है, वह होकर ही रहता है। कर्म के बंधन को कोई नहीं काट सकता है और प्रायः इस संसार में लोगों के जीवन में दुख लिखा है, बेचारे दुखी हो रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं चाहे वह छोटे से छोटी चींटी हो और चाहे स्वर्ग में स्वर्ग के देवताओं का राजा इंद्र हो, चींटी से लेकर इंद्र तक अपने अपने कर्मों का फल भोगतना पड़ता है, इससे कोई बाकात नहीं। लेकिन यहां पर कहते हैं यद अनुध्यासिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम, यदि कोई व्यक्ति भगवान के नाम की तलवार हाथ में ले ले, भगवान के नाम की तलवार हाथ में लेकर व्यक्ति अपने जीवन में जो कर्म के बंधन है उस कर्म के बंधन की ग्रंथि को भगवान के नाम की तलवार से काट सकता है। कर्माणि निर्दहति किन्तु च भक्ति भाजा, भगवान की भक्ति से ये सभी कर्म के बंधन को जलाकर भस्म किया जा सकता है। कर्म को काटने का एक ही उपाय है, भगवान की भक्ति, अन्यथा वह कर्म के फल भोगत नहीं पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है तो अपने जीवन में जो दुख आने वाले हैं उस दुखों से बच सकता है। यदि कोई भजन नहीं करता है तो वे दुख आने ही हैं। तो भगवान की कथा के द्वारा, भगवान के नाम के द्वारा व्यक्ति अपने कर्म बंधन को काट सकता है। इसलिए सूत गोस्वामी कहते हैं कि ऐसा कौन व्यक्ति होगा, कौन कुर्यात कथा रतिम, ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो भगवान की कथा में रुचि नहीं रखेगा। अर्थात भगवान की कथा सुनने से सभी कर्म के बंधन को काट सकते हैं, तो ऐसा कौन है जो भगवान की कथा में रुचि नहीं रखेगा। सब लोग रखेंगे और रखनी चाहिए। भगवान की कथा सुनने में लोलुपता रुचि होनी चाहिए। तो जब इस प्रकार से सूत गोस्वामी ने कहा तो 88,000 ऋषि मुनियों ने प्रश्न पूछा कि आपने कह तो दिया कि भगवान की कथा में रुचि होनी चाहिए, परंतु भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न कैसे करें? बोल देने से हो जाएगा? मैंने आपको कह दिया प्रभु जी आप कथा में रुचि उत्पन्न करो तो हो गई। अब आप बताइए कथा में रुचि उत्पन्न कैसे की जा सकती है। और आगे भी आपको बता चुके हैं कि इस संसार में, इस जीवन में जो कुछ भी हम करते हैं ये सब कुछ करने का लाभ तभी मिलता है जब भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न हो। धर्म स्व अनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुय न उत्पादयेत यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। इस संसार में बहुत बड़ी तपस्या करो, यज्ञ करो, हवन करो, बहुत बड़े बड़े कार्य करो, परंतु यदि भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न नहीं होती है तो वह गधे के समान श्रम एव हि केवलम, केवल श्रम है, उससे कुछ फायदा नहीं है। इसलिए सभी सब कुल मिलाकर यहां पर गाड़ी अटक रही है, भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न होनी चाहिए। यहां पर हम आकर बैठते तो हैं परंतु किन लोगों में कितनी रुचि है ये तो हृदय में बैठने वाले परमात्मा ही जानते हैं। कुछ हमारी जैसे लोग हैं वो केवल खिचड़ी खाने के लिए राह देखते हैं, कब बंद करेंगे और खिचड़ी खाएंगे। डरिए मत, हम भी ऐसे ही करते थे बहुत साल पहले जब हम भक्ति में आए, परंतु प्रसाद खाना भी एक भक्ति है। प्रसाद खाते खाते हृदय पवित्र होता है, शरीर अविद्या जाल। वास्तव में ये शरीर जो है अविद्या का जाल है, इसमें अविद्या और नाना प्रकार के काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य भरा है। जड़ेन्द्रिय ताहे काल, ये जो इंद्रियां है बिल्कुल जड़ है, और उसमें भी तार मध्य, उसके मध्य में जो जिह्वा है, तार मध्य जिह्वा यदि, ये तो लोभ माया सुदर, ये तो लोभमय, ये तो बहुत लोभी है। ताके जेता कठिन संसार है, और ये जीवा के कारण इस संसार को जीतना बहुत मुश्किल है। लेकिन कृष्ण बड़ो दयामय, लेकिन कृष्ण जो है ये बहुत दयामय है। करी वारे जीवा जो ये जीवा के लिए, ये जो जीवा अविद्या का जाल है, ये जीवा के लिए स्व प्रसाद अन्न दिलो भाई, अपना स्व अर्थात अपना प्रसाद प्रदान करते हैं। और सही अन्नामृत पाओ तो सभी लोगों को चाहिए कि भगवान कृष्ण का प्रसाद पाने लगे, और पाते हुए क्या करें, राधा कृष्ण गुण गाओ, हरे कृष्णा 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 हरे। तो भगवान का प्रसाद खाना यह भी एक भक्ति है। कुछ भी ना करो, केवल प्रसाद खाओ, आपका भजन पूर्ण है। परंतु केवल प्रसाद नहीं खाना चाहिए, साथ साथ कथा भी होनी चाहिए। तो कथा में रुचि बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, 88,000 ऋषि मुनियों का प्रश्न है। तो इसका उत्तर सुनना है, ये सबको सुनना चाहिए, सबको कथा में रुचि। एक बार कथा में रुचि उत्पन्न हो गई, वास्तव में इस संसार के दुख तब तक है जब तक कथा में रुचि उत्पन्न नहीं होती है। वो मुझे दुख दे रही है, वो मुझे दुख दे रहा है, या ठीक से खाना नहीं मिल रहा है, ठीक से पीना नहीं मिल रहा है, ठीक से घर नहीं है, ये कब तक है, जब तक कथा में रुचि नहीं है। जब कथा में रुचि उत्पन्न हो गई तो 7 दिन और 7 रात तक इसी कथा को, ये जो कथा हो रही है, ये कथा सुनने वाले राजा थे परीक्षित, 7 दिन 7 रात तक खाए नहीं, सोए नहीं, पिए नहीं, कुछ नहीं किए, पता भी नहीं चला कैसे 7 दिन बीत गए। जीवन बीत जाएगा पता नहीं चलेगा जब कथा में रुचि उत्पन्न होगी। हमारे गोस्वामी एक एक महीने तक कुछ नहीं खाते थे, फिर भी जीवन चलता था, कथा में रुचि थी। जब कथा में रुचि हो जाती है तब व्यक्ति सभी गुणों से ऊपर उठ जाता है और कथा में आनंद लेने लगता है। दुष्यंत च रमंत च, और दुनिया के यह दुख तब तक है जब तक इसमें रुचि नहीं है। तो कथा में रुचि होना अति आवश्यक है, और जिन जिन लोगों की कथा में रुचि नहीं है वे लोग गए। शिव जी की भार्या होते हुए भी, शिव जी की पत्नी सती थी, कुंभज ऋषि के पास एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शंभु भोलेनाथ भगवान शिव अपनी भार्या अपनी पत्नी सती को लेकर गए थे, कथा में रुचि नहीं हुई, कथा में नींद आ गई, भगवान के तत्व को नहीं जान सकी और अपना देह त्याग करना पड़ा। तो सती जैसी सती को भी देह त्याग करना पड़ रहा है तो हमारी तो क्या बात है इसमें। तो कथा में रुचि होनी चाहिए, और कथा में रुचि बढ़ाने के लिए क्या करना है, तो सुध गोस्वामी कहते हैं, सुशुशो शब्द धानस्य वासुदेव कथा रुचि श्याम महत सेवया विप्रा पुण्य तीर्थनी सेवनात्। भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न करने के लिए 4 चीज बता रहे हैं इस श्लोक में। सबसे पहले भगवान की सेवा में रुचि उत्पन्न करने के लिए सुशुशो पहला शब्द है आपके श्लोक में। सुशुशु का अर्थ होता है श्रवण करने की इच्छा। भगवान की कथा में यदि रुचि उत्पन्न करनी है तो भगवान की कथा श्रवण करने की इच्छा होनी चाहिए। अब इच्छा ही नहीं है, भगवान की कथा सुनने की इच्छा ही नहीं है, तो तो फिर कितना भी प्रयास करे वे रुचि उत्पन्न कर ही नहीं सकता है। फिर कथा सुनाने वाले वाला कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मंदिर का प्रेसिडेंट धर्म गुरु भी आ जाए, छोड़ दीजिए ब्रह्मा जी भी आ जाए, तब भी वह जिसकी इच्छा ही नहीं है तो उसे समझाने के लिए ब्रह्मा जी भी बैठे तो वे नहीं कथा में रुचि उत्पन्न कर सकता है। जिस दृष्टांत देते हैं, यदि कोई व्यक्ति एक रूम में अंदर से कड़ी मारकर बैठ गया है, दरवाजा लॉक करके बैठ गया है, तो बाहर से कोई भी गुरु आए या ब्रह्मा जी आए या भगवान भी आए और खटखटाए, जब तक अपने अंदर की कड़ी नहीं खोलेगा तब तक वे कुछ प्राप्त नहीं कर सकता है। ठीक उसी प्रकार जब तक हम अंदर से भगवान की कथा सुनने की इच्छा नहीं रखेंगे तब तक भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न नहीं होगी। तो सबसे पहले इच्छा होनी चाहिए, उसको नीचे बिठाइए, सबका ध्यान उसके ऊपर जा रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, तो भगवान की कथा में रुचि, ये पहली बात। और दूसरी बात बता रहे हैं श्रद्धानस्य, भगवान की कथा में श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा के साथ कथा सुननी चाहिए। ऐसा नहीं कि गए बैठे इस कान से सुने इस कान से निकालकर घर पर वापस, नहीं, श्रद्धा के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ। श्रद्धा का अर्थ क्या होता है? श्रद्धा का अर्थ होता है श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत है। ये मैं जो भागवत कथा सुन रहा हूं, ये कृष्ण कथा भागवत कथा सुनकर निश्चित रूप से मुझे भगवान की प्राप्ति होगी ही, यह दृढ़ विश्वास के साथ यदि कथा सुनते हैं तो निश्चित रूप से कथा में रुचि उत्पन्न होगी। और तीन जन्म में विश्वास होना चाहिए, भागवत में, भगवान में और यह सुनाने वाले गुरु में। यह तीनों पर, ये जो सुना रहा है बिल्कुल ठीक सुना रहा है, ये भागवत सुनकर धाम प्राप्त हो जाएगा और एक ही एकमात्र भगवान श्री कृष्ण है। जब इस प्रकार से पूर्ण श्रद्धा होगी तब भगवान में रुचि उत्पन्न हो सके। ये दो बता रहे हैं, सुनने की इच्छा होनी चाहिए और श्रद्धा होनी चाहिए। और तीसरी बात बता रहे हैं महत पुण्य तीर्थ निषेवनात्, पुण्य तीर्थ तीर्थों का सेवन करना चाहिए। भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न करने के लिए तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। तीर्थ यात्रा अर्थात जहां पर भगवान वास किए हैं, जहां पर भगवान का धाम है, ऐसे वृंदावन, मथुरा, मायापुर, जगन्नाथपुरी, अयोध्या इत्यादि यह जगहों पर जाना चाहिए। हम वृंदावन क्यों जाते हैं? हम वृंदावन इसलिए जाते हैं ताकि भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न हो। ये सुध गोस्वामी कह रहे हैं, यदि कथा में रुचि उत्पन्न करनी है तो तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। और तीर्थ यात्रा करने से स्वाभाविक, तीर्थ यात्रा में भी यदि आप जाते हो, वृंदावन में यदि आप जाते हो, तो जगह जगह पर भागवत सप्ताह होती है, जगह जगह पर भगवान का नाम होता है। और वो भूमि का यह प्रभाव होता है कि निश्चित रूप से तीर्थ यात्रा करने से भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न होती है। यह तीसरा और चौथी बात कर रहे हैं महत सेवया, ये बहुत सबसे बड़ी बात है। भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न करने के लिए इच्छा होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, तीर्थ यात्रा करना चाहिए और चौथी बात महत सेवया। महत का अर्थ होता है महात्मा, महात्माओं की सेवा करनी चाहिए, भक्तों की सेवा करनी चाहिए। भक्तों की सेवा करने से भगवान मिलते हैं, भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न होती है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भक्त पद धूलि आर भक्त पद जल, भक्त भूक्त अवशेष तीन महाबल। भक्ति में यदि प्रगति करनी है, भक्ति में आगे बढ़ना है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भक्ति करने के लिए भगवान के पास कोई सोर्स नहीं है। यदि आपको भक्ति चाहिए तो भगवान कुछ नहीं दे सकते हैं, भक्ति चाहिए तो भगवान के भक्त दे सकते हैं। इसलिए साक्षात भगवान कह रहे हैं कि भक्ति में सबसे बड़ा बल क्या है, कहते भक्त पद जल, भक्त पद जल और भक्त का उच्चिष्ट, भक्त मुक्त अवशेष और भक्त चरण धूली। भक्ति में प्रगति करने के लिए भगवान के पास कुछ नहीं है, भक्तों के पास। इसलिए भक्तों की सेवा करनी चाहिए, भक्तों के चरण की रज सिर पर लगानी चाहिए, भक्तों की ज्यादा से ज्यादा सेवा। जब तक हम भगवान के भक्तों को प्रसन्न नहीं करते हैं तब तक भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। और भगवान को प्रसन्न करने का कितना भी प्रयास कीजिए, भक्त यदि प्रसन्न नहीं है भगवान कभी प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए सबसे पहला उद्देश्य होना चाहिए भगवान के जो भक्त हैं उसे प्रसन्न करें, उसके चरण की रज प्राप्त करें। भागवत के पंचम स्कंध में कथा है, सौबीर देश का राजा, सौराष्ट्र का राजा जिसका नाम रहुगण था, राजा रहुगण भगवान कपिल देव के पास जा रहे थे, साक्षात भगवान के पास जाना चाहते थे। लेकिन बीच में एक व्यक्ति मिले जिसका नाम था जड़ भरत। जड़ भरत जी राजा रहुगण को बीच में मिले, रुका कर कहे तुम कहां जा रहे हो। इस प्रकार से जाने से भगवान नहीं मिलते हैं, रहुगण तो तपस्या नहीं आती है, रहुगण तपस्या करने से भगवान नहीं मिलते हैं। न छंद सा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने से भी भगवान नहीं मिलते हैं, न गृहात्मा घर छोड़ने से भगवान नहीं मिलते हैं। यदि घर छोड़ देने से भगवान मिलते हैं तो सभी प्राणी वन में ही रहते हैं, बंदर चाहे भालू चाहे शेर तो उनको मिल गए होते। न गृहात्मा न जल अग्नि एव सूर्यो, सूर्य में तपने से या जल में तपस्या करने से भगवान नहीं मिलते हैं। तो रहुगण ने पूछा तो भगवान कैसे मिलते हैं। रहुगणे तो तपसा न याति न छंद सा न गृहात्मा न जल अग्नि एव सूर्यो। वे कहते हैं जब तक भगवान के भक्तों के चरण की बिना महत्पाद रजोभिषेक, जब तक भगवान के भक्तों की चरण की रज से अभिषेक नहीं करोगे तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। जब तक भगवान के भक्त के सेवा नहीं करोगे तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। और नारद मुनि भी आगे चलकर इसी बात को स्वीकार करते हैं कि हे व्यास देव जी, आज मैं भक्त इसलिए बना हूं, आज मैं नारद की पोस्ट में इसलिए हूं क्योंकि मैंने भक्तों की सेवा की है। अगले जन्म में द्रुमिल गोप का पुत्र था, मेरी मां शूद्र थी, लेकिन भाग्यवश किसी साधुओं की भक्तों की सेवा करने का मौका मिल गया और मैं भक्तों की सेवा करता था। और भक्त जब खा लेते थे तो उनका जो बचा हुआ प्रसाद था वो मैं खाता था। इसलिए हे व्यासदेव जी, उच्चिष्ट लेपान अनुमोदित हो द्विज, उस साधुओं का जूठन खाने से, उस भक्तों की सेवा करने से आज मैं नारद बना हूं। और कैसा शरीर मिला है, संसार में लोगों को यहां से अमेरिका जाने के लिए टिकट निकालनी पड़ती है, प्लेन में बैठकर जाते हैं, परंतु भगवान की कृपा से आज मुझे ऐसा शरीर प्राप्त हुआ है, मैं मन की गति से जब चाहूं जहां चाहूं जा सकता हूं और बिना पेट्रोल के। तो इस प्रकार से भक्त की सेवा करने से भगवान मिलते हैं। और इसका ज्वलंत प्रमाण रामायण में यदि देखना चाहते हो तो शबरी जी का विवाह होने जा रहा था, देखा कि मेरे विवाह में इतने सारे भेड़ और बकरों को मारा जाएगा, नहीं देख सकी और विवाह होने से पहले ही घर से भाग गई। भागकर एक ऋषि के आश्रम में आई, उस ऋषि का नाम था मातंग ऋषि। वह जैसे ही सुबह होती वह ऋषि का उठने का समय होता, उसके पहले ही ये शबरी उनकी कुटिया को साफ कर देती। और ऋषि उठकर देखे तो पूरी कुटिया साफ थी। जब बहुत दिन तक ये होने लगा तो मातंग ऋषि ने देखा कि अब पता लगाना चाहिए ये है कौन, इस प्रकार से चुपके से सेवा करने वाली ये है कौन। तो मातंग ऋषि को पता चला यह शबरी है और यह शबरी ही हमारी सेवा कर रही है। शबरी जी ने और कुछ नहीं किया था, अपने गुरु मातंग ऋषि की सेवा की थी। कथा तो बहुत बड़ी है, परंतु सेवा करते करते एक दिन ऐसा आया कि मातंग ऋषि अपनी कुटिया छोड़कर जाने लगे। शबरी जी रोती हुई कहने लगी कि हे गुरु जी आप जा रहे हो, मेरा क्या होगा। तब मातंग ऋषि ने कहा कि हे शबरी, भगवान को प्राप्त करने के लिए मुझे यहां से भगवान के पास जाना पड़ रहा है, परंतु तुमने गुरु की ऐसी सेवा की है, ऐसी सेवा की है कि तुम्हें भगवान के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। एक दिन भगवान चलकर खोजते हुए तुम्हारे पास आएंगे, क्योंकि हे शबरी तुमने गुरु की भक्त की सेवा की है। और यही हुआ, मातंग ऋषि तो चले गए, शबरी जी रात दिन अपने गुरु की उस बात को याद करते हुए कि भगवान आएंगे, प्रभु आएंगे, रोज सुबह होकर अपनी कुटिया में फूल इत्यादि बिछा कर तैयार रखती थी कि आज मेरे प्रभु आएंगे, आज मेरे भगवान आएंगे, लेकिन नहीं आते थे। दूसरे दिन इस प्रकार से तैयार रखती थी, भगवान प्रभु आएंगे तो मैं उसे यह खिलाऊंगी। प्रतिदिन इस प्रकार से यह भगवान की तैयारी करते 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 पूरा जीवन बीत गया। यदि हमारा ऐसा अवसर होता तो दो तीन दिन हम तैयारी रखते, चौथे दिन नहीं रखते। अब ये तो आने वाले है नहीं, हम क्या तैयारी रखेंगे। और हम तो यहां तक कर दिए गुरु भी झूठे हैं, वो कह कर गए आएंगे कहां। भगवान आते हैं परंतु धैर्य होना चाहिए। शबरी जी प्रतिदिन सेवा करती और भगवान के आने की राह देखती, इसलिए बहुत ही सुंदर भजन गाते हैं। मन नो मोर लियो रटे तारू नाम, मारी झोपड़िए आओ मारा राम। हमारे समीर प्रभु नहीं है, नहीं तो चलाते हैं, गाते हैं। मन में यही भावना थी कि आज प्रभु आएंगे, आज प्रभु आएंगे, परंतु प्रभु नहीं आते थे। परंतु शबरी की भक्ति को देखकर एक दिन भगवान श्री रामचंद्र निश्चित शबरी की कुटिया में आए और शबरी के झूठे बोर खाए, बेर खाए, और शबरी के ऊपर अनुग्रह किए। शबरी भगवान साक्षात भगवान ने शबरी जी को नवधा भक्ति का उपरेत उपदेश किया। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। यह शबरी एक ऐसी भक्ता हो गई जिसे उपदेश नवदा भक्ति का उपदेश साक्षात भगवान श्री रामचंद्र ने। यह सब कुछ हुआ क्यों? क्योंकि शबरी ने अपने गुरु की सेवा की थी, भक्तों की सेवा की थी। यहां कहने का तात्पर्य यह है, भगवान की कथा में रुचि यदि चाहते हैं तो भगवान के भक्त की सेवा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से यह चार चीज के द्वारा शुश्रूषो शब्द दानस्य वासुदेव कथा रुचि श्याम महत सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निशेवनाथ। हे विप्रो, ये 88,000 ऋषि मुनियों, यदि भगवान की कथा में रुचि चाहते हो, यदि भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न करनी है तो भगवान की कथा सुनने की इच्छा रखो, भगवान की कथा में श्रद्धा रखो, तीर्थों का सेवन करो, तीर्थाटन करो और भगवान के भक्तों की सेवा करो। ये चार चीज करने से निश्चित रूप से भगवान की सेवा में रुचि उत्पन्न हो जाएगी। इस प्रकार से सुध गोस्वामी उत्तर दिए और सुध गोस्वामी भगवान की कथा की महिमा गाते हुए कहते हैं, शुण्वताम स्वकथाम कृष्णम पुण्य श्रवण कीर्तन हिदियंतस्थो ही भद्राणी विदुनोति सुहत्सताम। ये श्लोक के ऊपर व्याख्या करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि हमारे ही संस्था के संस्थापक आचार्य जिनका नाम है ऐसी भक्तिविदान स्वामी श्री प्रभुपाद। प्रभुपाद जी का जन्म इस भारत वर्ष में बंगाल में कलकत्ता में हुआ था और प्रभुपाद जी अपने गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती से दीक्षा लेकर 12 वर्ष तक वृंदावन में रुके और जब वे 12 वर्ष तक वृंदावन में रुके तब तक वह करीबन 70 साल के हो चुके थे और 70 साल की उम्र में प्रभुपाद जी ने सोचा कि भजन तो सब लोग करते हैं, अकेले भजन तो सब लोग करते हैं, परंतु इस संसार के लोगों को भी भगवान की भक्ति प्रदान करनी चाहिए। एक संत 70 साल की उम्र में सोच रहे हैं कि मैं जो भक्ति कर रहा हूं ये भक्ति मेरे तक सीमित नहीं होनी चाहिए, मैं जो भक्ति कर रहा हूं ये दूसरे लोगों को भी करवानी चाहिए, देनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने 70 साल की आयु में प्रचार करने का जिम्मेदारी लिया हाथ में और सोचा कि इस भारत वर्ष में प्रचार करेंगे तो ठीक नहीं है, भारत के लोग प्रायः इंपोर्टेड चीज चाहते हैं, दुकान में भी जाएंगे तो कहेंगे इंपोर्टेड दीजिए, इंडियन नहीं चाहिए, इंपोर्टेड दीजिए। भारत के लोग प्रायः अमेरिका की रूढ़ी को अपना रहे हैं, तो प्रभुपाद जी ने सोचा कि अमेरिका में यदि अटैक करूंगा, अमेरिका में प्रचार करूंगा तो भारत के लोग स्वाभाविक भजन में लगेंगे क्योंकि इंपोर्टेड चाहते हैं और भक्ति तो भारत की है, परंतु विदेश में जाकर उसे इंपोर्टेड बना दूंगा तो ये लोग इंपोर्टेड चाहते हैं, भारत की चीज को नहीं चाहते। तो 70 साल की आयु में प्रभुपाद जी के पास धन नहीं था, वे बहुत बड़े व्यक्ति नहीं थे और न तो उनके कोई शिष्य थे, कैसे भी करके बहुत प्रयास करके विदेश जाने के लिए उन्होंने कार्गो शिप जानते हैं, मालवाहक जो शिप बोट होती है स्टीमर, उस मालवाहक जहाज में बैठकर गए और वे जहाज 15-20 दिन में पहुंचता है, कभी कभी महीना भी लग जाता है। जहाज वालों ने कहा कि गुरुजी आप इतनी उम्र में इस जहाज में सफर करोगे, बहुत ठंड होती है, इस जहाज का कोई भरोसा नहीं है, इस दुनिया का सबसे बड़ा जहाज जिसका नाम टाइटेनिक था वो अपनी पहली यात्रा में समाप्त हो गया, जिसको बनाने में बहुत रुपए खर्च हुए थे, जहाज का कोई भरोसा नहीं होता है कब भंवर आ जाए कब गिर जाए और उसमें भी ठंडी गर्मी इसका प्रभाव बहुत होता है, तो आप इतनी उम्र में मत जाइए। प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं जाऊंगा और विदेश में जाकर प्रचार करूंगा जहां पर लोग नित्य मांसाहार शराब अवैध स्त्री संग में पड़े रहते हैं, वहां जाऊंगा और वो लोगों को मैं भक्ति प्रदान करूंगा। 70 साल की आयु में व्यक्ति ये सोच रहा है। आज का 70 साल का बूढ़ा या तो हॉस्पिटल में पड़ा होगा, या तो अपने लड़कों को परेशान कर रहा होगा, या तो शमशान में जल रहा होगा। 70 साल व्यक्ति कौन जीता है और जी कर भी इस प्रकार से सोचना कि प्रचार करेंगे ये कोई नहीं करता है। लेकिन प्रभुपाद जी यह किए और केवल एक अटैची लेकर उसमें 2-3 जोड़ी कपड़े और एक करताल लेकर निकल गए। उस जहाज में जा रहे थे तो कुछ दिन के बाद उस जहाज में उस प्रभुपाद जी को 70 साल की आयु में अटैक आया, दिल का दौरा। एक अटैक आया, ऊपर से दूसरा अटैक, दूसरा दिल का दौरा हुआ, तीसरा अटैक बाकी था। जब दूसरा अटैक आया सब लोगों ने कहा कि हम कह रहे थे कि आप मत जाइए, मत जाइए, मत आइए हमारे साथ, देखिए अटैक आया। तो उस वक्त प्रभुपाद जी जब अटैक आया तो बहुत नर्वस हो गए कि मैं तो जा रहा हूं प्रचार करने के लिए और मेरी उम्र क्या है, पूरी उम्र बीत गई है और उसमें भी ऐसे देश में जा रहा हूं अमेरिका में। उस वक्त अमेरिका और अमेरिका में न्यूयॉर्क सबसे कामी देश था, आज भी है, उस वक्त लोग नशा करने के लिए शराब तो पीते थे, मांसाहार करते थे, अवैध स्त्री संग करते थे, परंतु नशा लेने के लिए एलएसडी का प्रयोग करते थे। एक ऐसा इंजेक्शन आता है, उस इंजेक्शन यदि लगा दिया जाए तो 100 बोतल शराब पीने से जो नशा होता है वह एक इंजेक्शन से होता है, और लोग वो इंजेक्शन लेकर उस नशे में पड़े रहते थे। ऐसी स्थिति में प्रभुपाद जी ऐसे लोगों को भक्त बनाने के लिए सोच रहे थे और जा रहे थे। तो जब दो हार्ट अटैक आए तब प्रभुपाद जी ने सोचा कि अब मैं क्या करूंगा, एक तो ऑलरेडी मेरी तबीयत, मुझे हार्ट अटैक आ गया है, और वहां जहां पर जा रहा हूं वे लोग कैसे भक्त बनेंगे, वे लोग क्या सुनेंगे, मेरी बात को कैसे सुनेंगे। प्रभुपाद जी ने उस वक्त अपने बोल में लिखा है, बड़ो कृपा कैलो कृष्ण अध मेरे प्रति, एक भजन प्रभुपाद जी ने लिखा है। तो प्रभुपाद जी से सोच रहे थे कि मैं ये कार्य नहीं कर पाऊंगा। प्रभुपाद जी ने यह भी सोच लिया कि छोड़ो, मैं वहां से रिटर्न इसी जहाज में वापस आ जाऊंगा, यह भी सोच लिया। लेकिन यह सोच रहे थे तब प्रभुपाद जी को यह श्लोक याद आया, भागवत का प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय का यह 17वां श्लोक, 18वां श्लोक, 19वां, 20वां, 21वां और 22वां। जब यह 6 श्लोक प्रभुपाद जी को याद आए तब प्रभुपाद जी खड़े हो गए, और प्रभुपाद जी इस श्लोक में भगवान की कथा की महिमा है। प्रभुपाद जी ने देखा कि व्यास देव ने कहा है कि भगवान की कथा ऐसी है, इस श्लोक में आएगा, भगवान की कथा यदि कोई सुन लेता है तो भगवान उसके कानों के द्वारा हृदय में बैठ जाते हैं, और हृदय में बैठकर सभी के हृदय को धोकर साबुन से, जैसे हम कपड़े धोते हैं वैसे भगवान उस व्यक्ति के हृदय में बैठकर हृदय को धो देते हैं और शुद्ध भक्त बना देते हैं। प्रभुपाद जी को यह 6 श्लोक याद आए। प्रभुपाद जी ने अपने लेटरों में लिखा है, उस भजन में भी लिखा है कि शुण्वताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्लोक स्वकीर्तन। और जब प्रभुपाद जी को यह श्लोक याद आए तब प्रभुपाद जी को यह निश्चय हो गया, ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, परंतु कृष्ण कथा तो है, भागवत है, इस भागवत के द्वारा ये सबसे गए गुजरे लोगों को भी मैं भक्त बनाऊंगा। और यह होकर रहा, प्रभुपाद जी ने क्या किया, वहां जाकर न तो प्रभुपाद जी के पास माइक था, न तो हारमोनियम था, कुछ नहीं, एक जोड़ी करताल थे, कीर्तन कर रहे थे और भागवत कह रहे थे। और यह सुन सुनकर जो एलएसडी लेने वाले, जो 2400 घंटा नशा में पड़े रहने वाले लोग आज हरे कृष्ण महामंत्र में झूम रहे हैं, ये केवल ये भागवत की महिमा है। हरे कृष्णा यह भागवत की महिमा। तो आप देखिए, आपकी आंखें खुली हो जाएगी। जिस देश में, अमेरिका और न्यूयॉर्क में जो 2400 घंटा नशा में पड़े रहते हैं, ये भागवत सुन सुनकर भक्त बन गए, और ऐसे भक्त बन गए, ऐसे भक्त बने सन्यासी बन गए, और ऐसे भक्त बन गए कि वे लोग, वे अमेरिका के, न्यूयॉर्क के लोग आज भारत के लोगों को दीक्षा दे रहे हैं, भारत के लोगों को। हमारे यहाँ चौपाटी मंदिर के ग्रांड रोड में एक मंदिर है, वहां के राधानाथ महाराज जो अमेरिका के ही, ये न्यूयॉर्क के हैं, ये 3000 लोगों को दीक्षा दिए है। बोली कुल मिलाकर ये भागवत की महिमा है। भागवत सुनने से व्यक्ति पवित्र, सुनने मात्र से, ये कहने जा रहे हैं, इसलिए कहते हैं शुण्वताम स्वकथाम कृष्ण। मैं ये प्रसंग आपको याद करवा रहा हूं, शुण्वताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। सुध गोस्वामी कहते हैं कि पुण्य श्रवण कीर्तन, श्रवण और कीर्तन पवित्र करने, भगवान की कथा का श्रवण और भगवान के नाम का कीर्तन, ये संसार के लोगों को पवित्र करता है। भगवान का नाम ही इतना पवित्र है, भगवान की कथा इतनी पवित्र है, तो भगवान कितने पवित्र हैं, कल्पना कीजिए। भगवान का नाम लेकर, भगवान की कथा सुनकर लोग पवित्र हो जाते हैं, तो वे भगवान कितने पवित्र होंगे, परम पवित्र है भगवान। लेकिन संसार के कुछ मूर्ख लोग भगवान के ऊपर दोषारोपण करते हैं कि तुम्हारे कृष्ण तो कई गोपियों के साथ घूमते थे, ये तो इतना विवाह किए, तो तुम्हारी बहन के साथ किए थे। भगवान के ऊपर दोषारोपण करते, वास्तव में भगवान बिल्कुल पवित्र है। कुछ लोग यह भी यह कहते हैं भगवान इतनी गोपियों के साथ क्यों लीला किए। भगवान है, भगवान की शक्तियां है, भगवान अपनी शक्ति के साथ कुछ भी कर सकते हैं। और यदि भगवान की लीला, ये कहने वाले कौन है, मूर्ख लोग हैं जो भगवान के बारे में नहीं जानते हैं। वास्तव में जो भगवान के बारे में जानना चाहते हैं वे लोग ठीक से समझ सकते हैं। भगवान की लीला यदि आप पढ़ो या सुनो तो आप जान सकते हो भगवान कितने पवित्र है। आइए ब्रज वृंदावन में, वृंदावन में आज से 5000 वर्ष पूर्व एक समय की बात है। वृंदावन के, वृंदावन में यमुना नदी बहती है, तो यमुना नदी के उस पार एक बार दुर्वासा ऋषि आए थे। दुर्वासा ऋषि को तो जानते हो, श्राप देने में सबसे प्रवर, बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं और बहुत जल्द श्राप दे देते हैं, श्राप उसकी जुबान पर होता है। तो वृंदावन ब्रजवासियों को पता चला कि दुर्वासा ऋषि आए हैं, तो सब लोग डर गए, चलो दुर्वासा ऋषि के लिए कुछ प्रसाद बनाना होगा, यदि उसके लिए भोजन नहीं बनाएंगे तो वे क्रोधित हो जाएंगे, श्राप दे देंगे हमारे ब्रज वृंदावन के। तो सभी गोपियों ने बहुत सुंदर सुंदर भोजन और व्यंजन बनाया, और भोजन और व्यंजन बनाकर अपना अपना भोजन लेकर दुर्वासा ऋषि को देने के लिए आई, परंतु बीच से यमुना नदी बह रही थी। अब जैसे ही सब गोपियां यमुना को पार करने के लिए गई, परंतु यमुना तो बहुत गहरी थी, और जैसे पार करने जाती थी तो सब लोग डूब जाती थी, अब क्या करें। यदि पार करना चाहती है तो डूब जाएगी, और यदि भोजन नहीं पहुंचाएंगे तो ये श्राप दे देंगे, धर्म संकट, अब क्या किया जाए। तो वृंदावन में जब कभी भी आपत्ति आती थी तो सब लोग दौड़कर कृष्ण के पास जाते थे, बेसहारों के सहारा तो कृष्ण है ही। सब गोपियां कृष्ण के पास दौड़कर गई, कृष्ण कृष्ण एक बहुत बड़ी मुश्किली में फंस गए हैं, बहुत बड़ी आपत्ति आई है, दुर्वासा ऋषि आए हैं और उसके लिए हम भोजन लेकर जा रहे हैं, यदि उसको हम भोजन नहीं पहुंचाए तो वे श्राप दे देंगे, और यदि हम जाती है तो यमुना में डूब जाती है, क्या करें। कृष्ण ने कहा इतनी सी बात, जाओ तुम यमुना को जाकर कहो कि यदि कृष्ण नैष्ठिक ब्रह्मचारी है तो हमें उस पार जाने के लिए रास्ता दे दो। गोपियों ने कहा क्यों मजाक कर रहे हो हमारे साथ। गोपियों को भी विश्वास नहीं था, तो इस संसार के लोगों को विश्वास न हो ये कोई बड़ी बात नहीं है। गोपियों ने कहा क्यों हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हो, कुछ और रास्ता दिखाओ। कृष्ण ने कहा जाकर देखो तो सही, उस यमुना को कहना कि यदि कृष्ण नैष्ठिक ब्रह्मचारी है तो हमें रास्ता दे दो, और यदि कृष्ण नैष्ठिक ब्रह्मचारी नहीं है तो फिर मत दो। अब कृष्ण के कहने पर सभी गोपियां गई, किसी को विश्वास नहीं था कि यमुना रास्ता देगी, लेकिन सभी गोपियां गई और यमुना के पास खड़ी रहकर कही कि यदि कृष्ण नैष्ठिक ब्रह्मचारी है तो हमें जाने के लिए रास्ता दे दो। इतना कहते ही यमुना दोनों भागों में बढ़ गई और बिल्कुल हाईवे बना दिया गोपियों को जाने के लिए। यह तय हुआ, यह जगत में प्रसिद्ध हुआ कि कृष्ण वास्तविक में नैष्ठिक ब्रह्मचारी। आज भी वह स्थल भी मौजूद है, यदि दिवाली पर आप हमारे साथ चलोगे तो वह जगह भी बताएंगे कि कहां से गोपियां गई थी दुर्वासा ऋषि के पास। इसका अर्थ है भगवान कृष्ण के ऊपर दोषारोपण नहीं होना चाहिए, वे परम पवित्र है। उनकी लीला से चाहे देखो या सभी संतों का मत देखो, दूसरे की बात छोड़ दीजिए, अर्जुन कुरुक्षेत्र की भूमि के ऊपर खड़े खड़े कह रहे हैं और हजारों करोड़ों लोग सुन रहे हैं, एक भी व्यक्ति हाथ ऊपर करके नहीं कहा कि हमें इसमें डाउट है। अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु पवित्रम परमम भवान, परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान, हे कृष्ण आप परम ब्रह्म हो, परम धाम हो और आप सबसे परम पवित्र हो। दुर्योधन ने भी स्वीकार किया, पितामह भीष्म ने स्वीकार किया, सबने स्वीकार किया, किसी ने ऐसा नहीं कहा कि मुझे संदेह है कृष्ण पवित्र नहीं है, मुझे संदेह है। उस राष्ट्रीय सभा में भी प्रश्न उठा कि अग्र पूजा किसकी की जाए, किसी ने कहा द्रोणाचार्य की करो, किसी ने कहा पितामह भीष्म की करो, क्योंकि पितामह भीष्म आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किए हैं। परंतु जब भीष्म पितामह के पास आए तो पितामह भीष्म कहे कि आप मेरी क्या पूजा कर रहे हो, साक्षात अनंत कोटि ब्रह्मांड के नाथ नैष्ठिक ब्रह्मचारी ये कृष्ण तुम्हारे सामने खड़ा है, उनकी पूजा करो। और युधिष्ठिर महाराज ने उस राष्ट्रीय सभा में अग्र पूजा कृष्ण की। किसी को डाउट नहीं था, किसी का प्रश्न नहीं था क्यों कृष्ण की अग्र पूजा। हाँ, एक व्यक्ति को था, किसको था? शिशुपाल को। लेकिन उसका सिर काट दिया भगवान ने। इस संसार में जितने जितने लोगों को भगवान के ऊपर संदेह है, निश्चित रूप से वो मरेंगे और नरक में जाएंगे। क्योंकि अर्जुन कहते हैं आहुत्वाम ऋषिया सर्वे देवर्षि नारद तथा। जब अर्जुन ने कृष्ण को कुरुक्षेत्र की भूमि पर कहा कि हे कृष्ण आप बहुत परम पवित्र हो, भगवान ने कहा तू तो मेरा मित्र है, 24 घंटा मेरे साथ रहता है, तू तो कहेगा, दूसरे कोई कह रहे हैं कि मैं पवित्र हूं? भगवान ने कहा कि हे अर्जुन 24 घंटा साथ रहने वाला तो बड़ाई करता ही है, और कोई मुझे पवित्र कहने वाले हैं? तो अर्जुन ने कहा हां बहुत सारे हैं, असित, देवल, व्यास, ये असित ऋषि, देवल ऋषि, व्यास ऋषि, ये सब लोग कहते हैं। और सबकी बात छोड़ दीजिए, आप ही 5 मिनट पहले कह चुके हो कि मैं परम पवित्र हूं, दूसरों की क्या बात की है। तो इस प्रकार से भगवान परम पवित्र है और भगवान का नाम ही इतना पवित्र है कि भगवान का नाम लेकर हृदय पवित्र हो सकता है। भगवान पवित्र है इसलिए यदि भगवान का नाम लिया जाए, भगवान की लीला कथा सुनी जाए तो हम पवित्र हो सकते हैं। सुध गोस्वामी कहते हैं कि पुण्य श्रवण कीर्तन कृष्ण स्वकथा सुनवता। कृष्ण कथा यदि कोई भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनता है तो वो व्यक्ति पवित्र हो जाता है। कैसे? तो कहते हैं हृदयंतस्थो हि भद्राणि विदुनोति सुवत्सताम। कथा सुनने के द्वारा, कान के द्वारा कृष्ण उसके हृदय में उतरते हैं और हृदय में उतर कर, और हृदय में जब जाते हैं भगवान तो बहुत सब कुछ साथ में लेकर जाते हैं। सबसे पहले डिटर्जेंट साथ में लेकर जाते हैं, वो धोखा भी साथ में लेकर जाते हैं, लिक्विड भी साथ में लेकर जाते हैं, गर्म पानी भी साथ में लेकर जाते हैं और अंदर जाकर खूब धोते हैं इस हृदय को। अब हम क्या हमारे हृदय को धोएंगे? वास्तव में भगवान की कथा सुनिए, भगवान का नाम लीजिए और ये काम भगवान पे छोड़िए। कुछ लोग कहते हैं मैं मावा खाता हूँ छूटता नहीं है। अरे आप क्या छोड़ोगे? जीवन में 15 बार छोड़ चुके हो, 16वीं बार छोड़कर फिर भी शुरू ही हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं मैं चाय छोड़ना चाहता हूँ, आप क्या छोड़ेंगे? अपनी शक्ति से कुछ नहीं छोड़ सकते। हम तो यही कहते हैं छोड़ो मत, केवल कथा सुनो, भगवान का नाम लो, भगवान को कान के द्वारा हृदय में बिठाओ और ये काम साफ करने का काम भगवान पर छोड़ो, भगवान साफ करेंगे। बहुत हम क्या साफ करेंगे, भगवान साफ करने में बहुत मास्टर है, बहुत माहिर है। और ऐसा साफ करेंगे, ऐसा साफ करेंगे कैसे छूट जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा। आपको याद करना पड़ेगा मैं भी कभी मावा खाता था, गुटखा खाता था, भगवान पर छोड़िए। और हजारों हजारों दृष्टांत भी इस कौन में, बड़े 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 से बड़े भक्त भी पहले मांस खाते थे लेकिन भगवान ने सबका सफाया कर दिया। तो भगवान की कथा सुनने से हृदय पवित्र होता है। और अंत में कहते हैं सुहृद सताम, भगवान संतों के मित्र हैं। को जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करते हैं भगवान उनके मित्र बन जाते हैं, फ्रेंड बन जाते हैं। फिर मित्र बनाने के लिए घूमने की आवश्यकता नहीं है, भजन करो और कृष्ण को अपना मित्र बना लो। कृष्ण के साथ मित्रता रखिए, संसार के साथ नहीं, क्योंकि मित्रता निभाना तो कृष्ण ही जानते हैं और कोई नहीं जानते हैं। और जो इस संसार के मित्र है, जब सुखी जीवन होगा, अच्छा समय होगा तब साथ देंगे, जब दुख आएंगे तो भागेंगे। अच्छे से अच्छे लोग की स्थिति है, लेकिन भगवान जो है कृष्ण दुख में भी साथ देते हैं और सुख में भी साथ देते हैं। तो कृष्ण अपने भक्तों के मित्र है। तो प्रश्न होता है कृष्ण भक्तों के ही मित्र हैं, वैसे तो इस संसार में सब लोग कृष्ण के ही पुत्र है, तो कृष्ण का सबकी और बराबर स्वभाव होना चाहिए। स्वर्गम सर्वभूतानाम, भगवान भी कहते हैं कि मैं सभी जीवों के प्रति सम हूं सुहृद। तो यहाँ पर ऐसा क्यों कह रहे हैं सुहृद सताम, भक्तों के ही मित्र है। वास्तव में भगवान सबके मित्र है, परंतु इस मित्रता को भक्त ही जान सकते हैं, भक्त ही ग्रहण कर सकते हैं। भगवान तो सबके मित्र बनना चाहते हैं। भगवान को ऐसा नहीं है कि मैं इसका मित्र बनूं इसका न बनूं। भगवान को तो सबका मित्र बनना चाहते हैं, परंतु यहाँ के लोग ही भगवान को मित्र बनाना नहीं चाहते। भगवान कहते हैं कि मैं आपका मित्र हूं, तो यहाँ के लोग कहते हैं भगवान निराकार, अब कहां से मित्रता करोगे। बेचारे भगवान मित्रता करने आते हैं तो हम निराकार बना देते हैं। कोई पत्नी आपके साथ विवाह करने के लिए आए और आप कह दे निराकार है, मानेंगे पत्नी को निराकार कहेंगे नहीं, परंतु भगवान को कह देते हैं। कुछ लोग इसलिए निराकार मान कहते हैं कि पूजा सेवा करने से झंझट मारी से मुक्त हो जाए। भगवान को यदि मूर्ति की पूजा, भगवान को यदि साकार मानेंगे तो फिर कल उठकर दिया बत्ती अगरबत्ती करनी पड़ेगी, परंतु निराकार मानने से अच्छा है कुछ पूजा भक्ति कुछ मंदिर मंदिर मठ कुछ नहीं बनाना है, ऐसे निराकार की पूजा करो। परंतु भगवान साकार है, भगवान का रूप है, बहुत सुंदर रूप है। प्रसन्न नाथ मया गता विशेकत तथा न ममले वनवास दुखत मुखाम बुजे श्री रघुनंदन में सदास्त सामंजु मंगल प्रदा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं उस मुख का दर्शन करता हूं जब भगवान श्री रामचंद्र को कहा गया कि आपको कल अवध का राजा बनाना है, तब भगवान बहुत ही सुंदर अपना स्मित हंसे। और उसी कुछ घंटों के बाद भगवान को कहा गया कि 14 साल के लिए वन में जाना है, तब भी भगवान के मुख पर जो सुंदरता थी जो हंसी थी उस सुंदरता को प्रणाम है। नीलाम मुझे श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवाम भागम पाणो महाशा यत चारु चापम नमामि रामम रघुवंश नाथम। उस राम को हम प्रणाम करते हैं, रूप है भगवान का, निराकार नहीं है। तो इस प्रकार से यदि कोई भगवान की भक्ति करता है तो भगवान उसके मित्र बन जाते हैं और मित्रता की तरह व्यवहार करते हैं। बहुत बहुत दृष्टांत है, लेकिन एक दृष्टांत करके मैं समाप्त करूंगा। हमारे आचार्य षड गोस्वामी में से एक गोस्वामी हो गए सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी के पास एक छोटे से लड्डू गोपाल थे, भगवान को रखे थे और प्रतिदिन भगवान के साथ बातचीत करते थे, खेलते थे कूदते थे। और सनातन गोस्वामी तो निरंतर भजन करने में उनका ध्यान था और कभी कभार मधुकरी करते करते कुछ मिल जाता तो भगवान को भोग लगा देते। तो शुष्क रोटी भगवान को भोग भी सनातन गोस्वामी को क्या मिलता मधुकरी में, तो बिना घी लगाई हुई 5-10 दिनों की सूखी रोटी। और सनातन गोस्वामी भगवान के सामने रख देते, तो भगवान कहते हे सनातन ये क्या लगा रहा है, कम से कम नमक और मिर्ची तो साथ में दे। तो पता है सनातन गोस्वामी क्या कहते, मैं कुछ नहीं देने वाला हूं, तुम्हें खाना है तो रोटी खाओ, आज नमक मांग रहे हो मिर्ची मांग रहे हो कल गुलाब जामुन रसगुल्ला मांगोगे, मेरे पास यह समय नहीं है। मेरा जीवन भजन करने के लिए है कि आपको ये सब देने के लिए, मैं कुछ नहीं देने वाला हूं। तो भगवान ने कहा अच्छा आप मुझे कुछ नहीं दोगे, तो ठीक है मैं अपनी शक्ति से यदि जुटा लूं तो आपको कोई इतराज नहीं है ना। सनातन गोस्वामी ने कहा नहीं, यदि आप अपनी शक्ति से करना चाहते तो कर लो। भगवान ने कहा ठीक है कल देख लेंगे। और सनातन गोस्वामी एक छोटी सी कुटिया में 2-3 पत्थर के बीच में लड्डू गोपाल को रखे थे। भगवान ने कहा कि मैं यदि मेरा अरेंजमेंट कर लूं गुलाब जामुन रसगुल्ला का तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सनातन गोस्वामी कहे कि आपको करना है तो कर लो, मुझे कोई इतराज नहीं है। दूसरे ही दिन दिल्ली का एक सेठ था, कपूर सेठ जिसका नाम था, ये बहुत बड़ा ये कपूर का बिजनेस था और कपूर को एक्सपोर्ट करने के लिए दिल्ली से नाव को विदेश में भेज रहा था। परंतु वह नाव वहां यमुना के पास जहां पर ये रह रहे थे वहां पर आकर अटक गई। ये अटकाने वाले कोई नहीं, ये गोपाल जी ही थे। ये कपूर सेठ ने बहुत प्रयास किया लेकिन नाव उस जगह से हिली नहीं। हिली नहीं तो उसने बहुत प्रयास, अब क्या करे क्या करे। वो वहां से उतरकर कैसे भी उस किनारे पर आया और सनातन गोस्वामी से मिला और कहा कि प्रभु ये नाव फंस गई है। तो कहा कि जाइए, हमारे प्रभु यहाँ बैठे हैं, वो गोपाल जी सुन लेंगे आपकी बात। गोपाल जी ने कहा आपका काम बना दूंगा मैं। तो गोपाल जी ने कृपा करके, भगवान ने कृपा की और उसकी नाव ठीक से चलने लगी। तो कपूर सेठ ने कहा कि आपने मेरा इतना बड़ा काम कर दिया है, प्रभु आपको जो चाहिए वो मांगो। भगवान को कहने लगा, भगवान ने कहा तू मुझे क्या देगा, एक काम कर, यमुना के तट पर एक पत्थर टूट गया है, जो कुंड होता है उसमें स्टेप सीढ़ी होती है, उस सीढ़ी में से एक पत्थर टूट गया है, वो जरा ठीक करवा दे। कपूर सेठ दूसरे दिन गया, वो ठीक करवाने के लिए देखा तो ये पूरा चिंतामणि और पारसमणि से बना था। दूसरे दिन दौड़कर भगवान के पास आया, प्रभु आपने जो कहा मैं नहीं कर सकता हूं, मैं तो खामखा अहंकार में था। भगवान ने कहा एक काम कर, यहाँ पर बहुत बड़ा मंदिर बना दे, ऐसा मंदिर बनाना वृंदावन में किसी का ना हो, और क्योंकि उसमें मेरी अच्छी सेवा होगी, अच्छे भोग की व्यवस्था कर दो। कपूर सेठ ने कहा ठीक है, आज भी वो मंदिर है, भगवान अपने से ही अपनी व्यवस्था कर ली है। ये मित्रता है भगवान और भक्तों के बीच में। सनातन गोस्वामी ने कहा कि प्रभु आपको रहना है तो उस बड़े मंदिर में रहिए, हम तो इस कुटिया में ही ठीक है। तो वहां पर हम वृंदावन में जाएंगे तो यह देखेंगे, वृंदावन परिक्रमा जब हम करते हैं तो पहले ही यह मंदिर आता है, इसका दर्शन होता है। खैर, तो सुहृद सताम, भगवान अपने भक्त के मित्र बन जाते हैं। तो इतने बड़े बड़े काम सिद्ध कर देते हैं तो हमारे छोटे बड़े ये मंदी और सब क्या है, ये तो भगवान ऐसे चुटकी में ठीक कर देंगे, परंतु भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भक्ति से यह ठीक होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो इस प्रकार भगवान की कथा की महिमा है, भगवान की कथा में रुचि होनी चाहिए, उसके लिए ये चार कार्य है, और आगे भी भगवान की कथा की महिमा सुध गोस्वामी बताएंगे। तो आप आइए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। हरे कृष्णा।